श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। प्रारंभ हो तो है सुनो वीर हनुमान, आसन लीजे आन करो पवन पुत्र हनुमान। हाँ तो साथियों, आज हम आपको समक्ष रखने जा रहे हैं लक्ष्मण शक्ति इस प्रसंग को। तो देखिए, सभी योद्धा समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। अक्षय कुमार का वध हो चुका है, लंका जो है वो भी जलकर राख हो चुकी है। प्रभु ने बहुत चाहा कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता, चाहे वो युद्ध घर का हो चाहे बाहर का हो। प्रभु ने लाख कोशिश की, लाख प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब युद्ध समाप्त होने का कोई आसार नजर नहीं आया, तो अपने पिता से मेघनाद बलवान जो है आज्ञा लेकर के युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है। उससे पहले देखिए, जिस समय चलता है मेघनाद लंका के अंदर से, तो हमारे कई महोदय क्या लिखते हैं कि लंका के तब नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी, इस मेघनाद योद्धा की थी, या सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। सेना जीता था इसने इंद्रलोक, या इंद्रजीत कहलाता था, या इंद्रजीत कहलाता था, सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। सब बेटों में मेघनाद बेटा सबसे प्यारा था, और इसमें खास बात और थी, इंद्र को जीत करके इसने इंद्रजीत की पदवी प्राप्त की थी। और साथियों, सबसे बड़ी विशेष बात तो यह थी कि इसकी जो पत्नी थी ना सुलोचना, बहुत बड़ी सती थी, और जब जब भी मेघनाद युद्ध करने के लिए जाता था तब तब अपनी पत्नी से गले में हार पहनकर और तिलक करवा के जाता था। और जिस समय पत्नी कह देती थी स्वामी जाओ, आज मैं अपने सतीत्व के बल पर यह कहती हूं कि आपकी विजय अवश्य होगी, तब तब संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो कि मेघनाद को युद्ध में पराजित कर देती। आज जिस समय मेघनाद पहुंचा और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय आज मैं रामादल में युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, पत्नी उस वक्त सुंदर गले में जयमाला डाल के और कहती है स्वामी जाओ, कि जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिना करके, जिस समय नारी ने विदा किया लिखना करके कह उठी सती सत के बल पर, कह उठी सती सत के बल पर, आगे आज विजय पाके। मैं अपने सत्य बल पर कहती हूं कि आज आपकी जीत अवश्य हो जाएगी। जिस समय सती के मुख से ऐसा वचन निकलता है, सतियां क्या नहीं कर सकती। सती अनुसुईया को ही आप देखें, जिन्होंने की परमपिता परमात्मा जब दरवाजे पर पहुंचे ना, छह छह महीने के बच्चे बना दिए। अन्य सतियों को आप देखें, लाजवंती सती का नाम आता है, जिस समय दुर्वासा ऋषि के समक्ष अपने अंधे पति को लेकर पहुंची, पति के पैरों की ठोकर लग गई जब संत के, जबकि संत का स्वभाव यह बतलाया गया है वेदों में कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के तरीके से मुलायम होता है। लेकिन यहां पर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया, श्राप दे दिया कि अंधे तूने मेरे पैरों की ठोकर मारी है ना, जा प्रातः काल होते ही तेरे प्राण निकल जाएंगे। पत्नी गिड़गिड़ाई, स्वामी से अपराध हुआ है लेकिन अनजाने में हुआ है, भूल से हुआ है, पैरों की ठोकर तो जरूर लगी लेकिन जानबूझकर नहीं लगी, मुनिवर इन्हें क्षमा कर दो। लेकिन मुनिवर क्रोध दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरा दिया हुआ श्राप गलत नहीं हो सकता। कि मामा जो श्राप झूठ ना होई, मम जो श्राप झूठ ना होई, मम जो श्राप झूठ ना होई, जाने सचरा चर सब कोई, सतवंती ने कहा ठीक है स्वामी, आप चिंता ना करें मुनिवार, अगर आप ये कहते हैं कि प्रातः काल होते ही मेरे पति के प्राण चले जाएंगे तो जाओ, मैं भी अपने सत्य बल पर ये कहती हूं कि कल सवेरा ही नहीं होगा। और ऐसे ही हुआ, जब काफी दिनों तक सूर्य ना निकला, अंत में सभी देव एकत्रित हुए और दोनों का समझौता कराया। तो आज देवता मन में विचार करते हैं कि मेघनाथ सतवंती का सत्य बल लेकर जाता है, हे प्रभु सती का दिया हुआ वचन असत्य नहीं होता। लेकिन साथियों, मैं सतियों की बात कर रहा हूं, ऐसी सतियों की नहीं। एक सती अपने आंगन में मूसल लिए हुए धान कूट रही थी, इतने में उसका पति आया, कहने लगा प्रिय सुनो मुझे प्यास लगी हुई है, जरा जल्दी से पानी ला दो। सती ने कहा स्वामी अभी जा रही हूं। सती वहां से उठी, उठने के बाद उसने जल भरा, बर्तन साफ किया, लौट के आई, पति को जल पिलाया, फिर बर्तन साफ करके यथास्थान पर आई और तब तक उसके सत्य बल पर मूसल वहीं का वहीं टिका रहा। यह करिश्मा एक पड़ोसन देख रही थी उल्टा, उसने सोचा है इसमें क्या बात है, अगर ये ऐसा कर सकती है तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो भी गई अपने पिता के घर में और अपने पति से कहा सुनो, हम जब सवेरे धान कूटने बैठेंगे ना तो तुम हमसे पानी आकर के मांगना। जब धान कूटने लगी, पति आए, कहा पानी दो, तो उसने पानी देना चाहा लेकिन उससे पहले मूसल को ऊपर फेंका, सोचा लाओ एक बार देख तो लूं कि भाई मूसल ऊपर रुका नहीं रुका। लेकिन जैसे ही ऊपर सर उठाया, मूसल गिरता है और उसके नाक मुंह सभी फूट जाते हैं। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि मैं एक सतवंती की बात कर रहा हूं कि जिस समय देवताओं ने विचार किया कि आज मेघनाथ एक सतवंती का सत्य बल लेकर जा रहा है, पता नहीं विधना क्या होगा, रामा दल का कौन सा वीर योद्धा आज सतवंती के सत्य बल पर बलिदान होने वाला है। सभी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे विधना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है, युद्ध के मैदान में पहुंचा मेघनाद, वानर दल के ऊपर घोर प्रहार करने लगा। वानर बेचारे भयभीत होकर राम की दुहाई देकर भागने लगे। जिस समय देखा हमारे वानर साथी लाचार है युद्ध भूमि के अंदर, अपने भैया श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को लेकर छोटे भाई लखन जी तैयार होते हैं। जटाजूट को बांध करके जिस समय आए, मेघनाद ने जिस समय लक्ष्मण जी को देखा, कहने लगा, ओ बच्चे, अरे युद्ध का मैदान है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं जो अपनी जान गंवाने आए हो। मेघनाद कहने लगा सन्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। या सुपर्ण खाकी नाप नहीं, पीछा न बाल बानर का है, पीछा न बाल बानर का है, या नहीं शिकार श्रवण का है, या नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू ये लंकेश्वर का है। जिन दांतों का ना सूखा दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा तारिका बध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण सिरा के बध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। अरे बच्चे, अपने अगर जान की खैर चाहते हो ना तो युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाओ, वरना क्यों हमारे यहाँ तो मरने आए हो। ये तारिका का बद नहीं है, ये खरदूषण की मौत नहीं है, ये बाली का पीछा नहीं है, ये बहन सुपरखा की नाक नहीं है, आज मेघनाद से पाला है। लक्ष्मण जी कहने लगे, वाह भाई वाह, कभी भी बकने वालों की बात का या चोर की बात का स्याह लोग बुरा नहीं मानते। और देखो, जो बादल गरजने वाले होते हैं ना वे बरसते नहीं, और जो बरसने वाले होते हैं वो गरजा नहीं करते, आते हैं और बरस कर चले जाते हैं। तुम्हें साथ नहीं मालूम, रघुवंशी लोग तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, रघुवंश का एक अंश खड़ा हुआ है, और हमारे वंश की ये प्रथा रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। लखन लाल के बैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में भैया भिड़ गए दोनों वीर विशाल। आज धनुआ पर धनुआ खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे, वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। इधर से जब मेघ बाण जाता है तो उधर से समीर बाण आता है, इधर से जब अग्नि बाण जाता है तो लक्ष्मण जी नीर बाण को छोड़ते हैं। नाना प्रकार की चतुराई को दिखाते हुए दोनों वीर योद्धा आपस में भिड़े हुए हैं। लेकिन एक बार जब उर्मिला नाथ यानी लक्ष्मण जी के बाणों से इंद्रजीत मूर्छित हो गया तो अपने मन में विचार करता है कि अरे, मैं जिस लक्ष्मण को एक मामूली योद्धा समझ रहा था, ये तो साक्षात प्रलय का सामान बनकर आया है। तब लगा सोचने, क्या करिए, ये तो सामान प्रलय का है।
सचमुच अवतार विजय का है।
कहने लगा विजयोधा, लक्ष्मण हमारी बात सुनो, अभी तक तो हम तुमको केवल खेल खिलाते थे, लेकिन अब तुमको खाने की बारी आई है, इसलिए संभल जाओ, शक्तिमान के रूप में तुम्हारी मृत्यु आ पहुंची है। ये जो ब्रह्म शक्ति मैं तुम पर चलाने के लिए जा रहा हूं ना, ये ब्रह्मा के यहां से मुझको प्राप्त हुई थी। जिस समय मैंने इंद्र को जीता था उस समय मेरे हाथों में आई थी। इसमें एक विशेषता है, इसका मारा हुआ व्यक्ति बेहोश होकर सूर्य निकलते ही अपने प्राणों को छोड़ देता है, और ज्यों ही ये शक्ति मनुष्य पर पड़ती है वो मरे के समान हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा, ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा, किस मद को धिकार रामा, इस मद को धिकार, बाण गए मुगदर गए, गई गदा तलवार। लक्ष्मण ने कहा, वाह भैया वाह, अरे जब सारे युद्ध अस्त्र समाप्त हो गए ना, तो अब ब्रह्मास्त्र की ठान ली, तुम कितना भी गिर जाओ लेकिन जात के ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण के आगे इस सूर्यवंशी लक्ष्मण का सर हमेशा झुकता है। अगर ब्रह्म शक्ति से प्राण जाते हैं तो कोई चिंता नहीं। इतना कहते कहते उस वीर योद्धा का प्रहार लक्ष्मण ने अपने हृदय पर स्वीकार किया। देवता तक कहने लगे, धन्य है युद्ध भूमि में भी इतना मान सम्मान। समर भूमि में जब गिरे हो कर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया मेघनाद तब पास। मेघनाद चाहता है कि लाओ इनको उठा करके ले जाऊं, अपने पिता को दिखाऊं कि देखो मैंने अपने वैरी को किस प्रकार से संघारा है। लेकिन साथियों, लक्ष्मण पर मूर्छा लाना तो आसान था, लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रहार करना तो आसान था, लेकिन लक्ष्मण को, शेषावतार को उठाकर इस प्रकार से ले जाना ये कोई आसान बात नहीं थी। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन आज उठाना तो दूर रहा, हिला तक नहीं पाए। देखिए शेषनाग जी की गरुवाई ने तीन जगह पर काम किया है। एक जगह तो जब धनुष को उठाने का समय आया, लक्ष्मण जी ने सोच लिया कि जब तक मेरे भैया पास में नहीं जाएंगे धनुष नहीं उठेगा। जब अंगद ने पैर जमाया तब भी लक्ष्मण जी की गरुवाई ने ही कार्य किया, और आज यहां भी शेषनाग जी की शक्ति कार्य कर रही है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने पर भी जब मेघनाथ न उठा सका, मन में सपचाकर शर्मा कर वापिस हो गया। तब तक देखता क्या है, रामा दल से एक मामूली सा वानर आया और जय श्री राम कहकर कंधे पे उठा लिया और चला गया। सभी जान गए कि और कोई नहीं थे, वीर हनुमंत लाल जी थे। बोलिए हनुमंत लाल की जय। दृश्य और का और हो गया। ये साथियों सत्य कहा है, समय का कोई फिर नहीं जानता किस वक्त क्या होता है। कहीं सहनाइयां बजती हैं तो कहीं मातम होता है, कहीं खुशियां मनाई जाती हैं तो कहीं दुख होता है। इस समय पड़े पर कोई भैया काम ना आता है, समय का चक्कर सब पर आता है। समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की रानी, समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की रानी, समय पड़े पर महाराज ने भरा डोम घर पानी।
समय का चक्कर सब पर आता है।
क्या हमारे श्री राघवेंद्र सरकार को यह पता था कि यह समय भी हमको देखना पड़ेगा?
गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर बजा घात हुआ। लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। समय कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। संसार कहेगा बनरों ने, बन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो बन को भाग गए,
सब कुछ खोए रघुवंशी। बेकार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम,
अच्छा है डूबे सागर में, अच्छा है डूबे सागर में,
अस्तित्व मिटाए अपना हम। ने तभी की रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। विभीषण ने कहा, प्रभु जो चतुर लोग होते हैं ना, वो अंत समय तक अपना प्रयास नहीं छोड़ते। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। प्रभु लंका में एक सुखेड़ नाम का वैद्य है, बड़ा विख्यात है और वो सभी प्रकार की औषधियों को जानता है। मेरा जाना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जाकर हो सकता है ना वापस लौट पाऊं। लंका में ऐसा व्यक्ति जाए जो इससे पहले भी कभी जा चुका हो। विभीषण कुछ और भी बोल पाते, वीर हनुमंतलाल बीच में भैया कूद पड़े। अरे कहा, प्रभु हमको आज्ञा दीजिए, हम जाएंगे। हम तो लंका को भली प्रकार से कौन कहे, लंका का एक एक कोना छान करके आ चुके हैं। मैं लाता हूं इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। सुखेन भाई सुखेन वैद्य को उठा लिया। रास्ते में जब सुखेन जागा, देखा सामने जो है भैया रामा दल के हनुमंत लाल जी ने सुखेन को लाके रखा। जिस समय देखा कि सम्मुख रघुराई बैठे हुए हैं, छोटे भाई को गोद में लिए हुए व्याकुल जेठे भाई बैठे हैं, मनमोहन श्याम सलोना सुंदर स्वरूप देखकर अपार मन में प्रसन्नता आई, लेकिन अपना रूप अपना भाव बदलकर सुखेन ने जिस वक्त प्रभु राम की ओर देखा, प्रभु कहने लगे भैया सुखेन, अरे वैद्यराज जल्दी से कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमारे भाई के प्राण बच जाएं। सुखेन कहने लगा प्रभु आप तो धर्म के अवतार हैं, आज आप पर एक न्याय छोड़ता हूं, जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसे ही काम करूंगा। सुखेन कहता है कि प्रभु आप तो धर्म के अवतार हैं, मैं ये फैसला आप पर ही छोड़ता हूं, जैसा आप मुझे समझे वैसा करें। प्रभु ने कहा भैया कैसा फैसला? कि मैं वैद्य दशा नन के घर का किस तरह है आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। हे राम आज्ञा देते हो, हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। आज कहता है सुखेन प्रभु ये बताइए, मेरे बच्चों की जीविका यानी भोजन चलता है दशानन के यहां से, रावण के यहां से, मेरे पेट का पालन होता है रावण के यहां से। हे नाथ, जब मेरा मालिक वो है, मेरे जीवन का आधार वो है, मेरी जीविका का साधन वो है, तो मैं अपने मालिक के साथ बुराई कैसे करूं? ये तो साक्षात अधर्म होगा। हे नाथ, क्या आप ये आज्ञा देते हो कि मैं इस वक्त जानबूझकर अधर्म का रास्ता अपनाऊं? प्रभु चौंक गए, क्या कहते हो सुखेन? अगर तुमने ये प्रश्न पूछा है ना, तो राम का भी उत्तर सुनो। राम तो धर्म की बुनियाद पर ही जन्म लेकर आया है,
कि जिस धर्म है तू निज राज गया, श्री पितर देव का स्मरण हुआ, जिस धर्म है तू प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, और उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी लेकिन हाँ धर्म नहीं जाने पाए।